ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा से मिलने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसी उत्सुकता में हैं, और प्यारे बाबा से अनेक ज्ञान रतन खजाने हम सबको मिलते ही रहते हैं, और उन्हीं रत्नों में से कुछ रत्नों की चर्चा अभी हम करेंगे। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हमारे कितनी प्रकार के संस्कार हैं। एक संस्कार तो है अनादि काल वाले, जब हम बाबा के पास थे, अपने स्वीट होम में थे, बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठे थे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब आप परम धाम में होते हैं तब भी आप बच्चों की चमक बाकी आत्माओं से ज्यादा होती है, और आप बैठते भी बिल्कुल बाबा के समीप हो। और बाबा ने ये भी कहा था कि उस समय तो आप बच्चे बाप समान ही होते हो, जो बाप के संस्कार हैं वो आपके भी होते हैं। तो वो हमारे अनादि संस्कार हैं, लेकिन हम सदा अनादि स्वरूप में नहीं रह सकते। पाठ बजाने के लिए नीचे आते हैं और देवताई युग में देवताई रोल प्ले करते हैं, तो वो हमारे आदिकालीन संस्कार हैं। दिव्य गुणों के आधार पे हम उस समय कर्म करते हैं, सत्यता, दिव्यता, नम्रता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता, ये सब हमारे देवताई जीवन के संस्कार हैं। लेकिन हम देवता भी हमेशा नहीं रह सकते, उसके बाद फिर हमारा रोल चेंज होता है, और फिर मध्यकालीन संस्कार जिनमें देहाभिमान और देहाभिमान से उत्पन्न अनेक प्रकार की विकृतियां आती हैं, वो मध्यकालीन संस्कार है। और उसके बाद संगम योगी ब्राह्मण जीवन के संस्कार, जिन्हें हम ईश्वरीय संस्कार कह सकते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा के संस्कार, इस समय हम बच्चों में इमर्ज हो रही हैं, और उनके आधार पे हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हैं। अब इन चारों प्रकार के संस्कारों में से हमें अनादि और आदिकालीन को फिर से प्रत्यक्ष करना है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि हम देवता बनना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में मध्यकाल के संस्कार डिस्टर्ब करते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि बच्चे ये जो कै वाले चार पांच सवाल होते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, कितना, तो जैसे मम्मा कहती थी कै कै कौवा करता है, तो ये कै वाली बातें अच्छी नहीं होती, लेकिन ये कै वाली बातें हमारे संस्कार बदलने में हमें काफी काम आएंगी। तो आज हम देखेंगे कि ये कह वाले जितने भी प्रश्न हैं, इनका हम सदुपयोग करके संस्कार परिवर्तन में कैसे इनको यूज करें। अब जैसे सबसे बड़ा जो कह वाला प्रश्न है वो है क्या, तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं और अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे में इस समय कोई ऐसा संस्कार है जो आदि काल में और अनादि काल में मेरे में नहीं था। ये हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या मेरे में वर्तमान समय ऐसा कोई संस्कार है जो ना तो परम धाम में था और ना ही सतयुग त्रेता इन दो देवताई युगों में था। अब हम अपने भीतर जाएंगे और खोजबीन करेंगे कि ऐसा कोई संस्कार अभी तक दबा पड़ा है क्या। तो ये क्या नाम का प्रश्न हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे दीपावली आती है तो घर के कोने कोने को अपन अच्छे से देखते हैं कि कोई पुरानी चीज तो नहीं पड़ी, बेकार चीज तो नहीं पड़ी, व्यर्थ चीज तो नहीं पड़ी, गली सड़ी चीज तो नहीं पड़ी। तो सबसे पहले तो अपन उसकी खोजबीन करते हैं, फिर उसको उठा के फेंकते हैं। तो आज अपने भीतर जाकर के अपन हरेक कोने में देखेंगे कि क्या मेरे में ऐसा कोई संस्कार तो नहीं है। और इस खोजबीन के लिए आपको एक मिनट मिलेगा। आप एक मिनट के लिए बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाइए, अपना कॉपी पेन रख दीजिए और भीतर जाकर के कोने कोने में खोजिए कि क्या मेरे में ऐसा कोई संस्कार है। सिर्फ खोजना है, किसी को बताना नहीं है, सिर्फ उसकी खोज करनी है। आज हमको भी खोजी बनना है। दुनिया में जो खोजी होते हैं उनकी बड़ी महिमा होती है। आपको पता है कोलंबस ने अमेरिका को खोजा और वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। हमें तो अपने आप को खोजना है, लेकिन अपने आप को खोजना दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। तो चलिए एक मिनट के लिए अंतर्मुखी हो जाते हैं। ओम शांति। तो अपने आप की खोज हो गई ना, खोज लिया ना अपने आप को। एक मिला के दो मिले, तीन मिले, कई सारे मिले, किसी को कितने मिले, किसी को कितने मिले, पर मिले जरूर। अब हमारा अगला सवाल है, क्यों मेरा ये संस्कार बना, क्यों? हमारे संस्कारों की कहानी कुछ ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। ज्ञात तो वो है जो इस जन्म के हैं, लेकिन जो पिछले जन्म के हैं उनकी कहानी तो अज्ञात है, वो कब बने, कैसे बने। पर इस जन्म के कुछ संस्कार कैसे बने वो हमें मालूम है। जैसे मान लो किसी को कुसंग में आके कुछ खाने पीने की आदत पड़ी, तो उसको वो बिल्कुल स्मृति है कि मुझे 15 साल तक ये संस्कार नहीं था, कि 20 तक नहीं था, लेकिन उसके बाद मेरे में ये आया। मान लीजिए किसी में कोई क्रोध का संस्कार आया, उसको भी याद आएगा कि जब मैं बच्चा था तो मेरे में ये संस्कार नहीं था, लेकिन जब जिम्मेवारियां पड़ी और जब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत काम करने पड़े, तो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। या किसी को ये भी याद होगा कि भय कब आया, डर कब आया, घर में कोई क्रोधी व्यक्ति था, जोर से बोलता था तो उसको देख के डर लगता था, तो डरने की आदत पड़ गई। तो ये संस्कार क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, एक बार हम अपने भीतर जाकर के उस सिचुएशन को भी याद करेंगे कि पहले मेरे में ये बुराई नहीं थी, लेकिन जब ये परिस्थिति आई तो इस परिस्थिति के कारण मेरे में ये संस्कार बना, मैंने झूठ बोला, या मेरे अंदर ईर्ष्या का संस्कार पैदा हुआ, या आलस्य आने लगा, या मेरे भीतर बदले की आग जागी। उससे पहले नहीं थी, लेकिन ये घटना घटने के बाद हुई। तो एक बार फिर हम अपने भीतर जाएंगे और उस समय को रिकॉल करेंगे जब हमारे अंदर वो संस्कार बना, क्यों बना, इसका उत्तर खोजेंगे। पुनः एक मिनट अंतर्मुखी हो जाइए और अपने जीवन के ऊपर एक नजर दौड़ाइए, बाल्यकाल से लेकर के अभी तक। जब आप नजर दौड़ाएंगे तो वो बिंदु अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे जहां ये संस्कार बना। ओम शांति। कारण का भी पता पड़ गया और समय भी याद आ गया कि ये कब बना। कोई कभी बना, कोई कभी बना, लेकिन क्यों बना और कब बना, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कितना इस संस्कार ने मेरा कितना नुकसान किया। अगर ये मेरे जीवन में ना होता तो आज मैं कितना आगे बढ़ गया होता। अगर ये संस्कार मेरे जीवन में ना होता तो आज मेरी कितनी इज्जत होती। इस संस्कार ने मेरा कितना समय खाया, कितनी शक्तियां नष्ट की, कितना मेरा धन बिगाड़ा, कितना लोगों के साथ मेरे रिश्ते खराब किए। जैसे हम रास्ते जाते हैं और कोई झाड़ी हमारे रास्ते में हो तो उसको हम तुरंत काट के फेंकते हैं, हमें पता है ये उलझाएगी या इसके कांटे चुभेंगे। अपन ये नहीं सोचते कि क्या करूं, कैसे करूं, नहीं, रास्ता अपने को क्लियर चाहिए। अगर अपन भोजन खाते हैं, थाली में कोई मच्छर गिर जाए तो अपन सोचते थोड़ी हैं कि कैसे निकालूं, एक सेकंड में उसको निकाल देते हैं, पता है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो संस्कार आया वो कितना नुकसानकारक है, और उसको जब तक मैं ना निकालूं तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। वो तो अभी भी मेरा रास्ता रोक करके खड़ा हुआ है। अपन एक बार थोड़ा इतिहास पे नजर दौड़ाएं। बाबा मुरली में सोमनाथ के मंदिर की बहुत चर्चा करते हैं। सोमनाथ की कहानी हम सबने सुनी है। जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ तो उस समय एक राजा वहां राज्य करता था, भीमदेव उसका नाम था। बहुत अच्छा राजा था, प्रजापालक था और बहुत वीर था, योद्धा था। और जब आक्रमण हुआ तो उसने बहुत बहादुरी से सबका सामना किया। लेकिन उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी, तो उसने बहुत सारे राजाओं से मदद मांगी कि भाई मैंने सुना है आक्रमणकारी आ रही है, हमको मदद करो। लेकिन सबने मना कर दिया, भाई तुम अपने राज्य की चिंता खुद कर, हम क्यों आए युद्ध में। तो बेचारा अकेला पड़ गया, लेकिन फिर भी बहादुरी से लड़ा। दूसरा क्या हुआ कि सोमनाथ मंदिर का एक पुजारी था, तो इन दोनों की आपस में किसी बात के कारण टक्कर हो गई। तो पुजारी को लगा कि ये राजा तो ज्यादा ताकतवर है, इसको मैं तो मार नहीं सकता, लेकिन ये मर जाए किसी तरह तो बहुत अच्छा हो, मेरा रास्ता साफ हो जाए। तो उसके मन में एक तो ईर्ष्या पैदा हुई, एक क्रोध आया राजा के लिए, एक बदले की अग्नि भी पैदा हुई। तो इन तीन बातों के कारण उसने चुपके से जाकर के गजनवी को मंदिर का पीछे का गुप्त रास्ता बता दिया। और गजनवी के सैनिक टिड्डियों की तरह से आ गए और अंदर घुस गए और उन्होंने राजा को मारा। पर राजा मरा नहीं, केवल बेहोश हुआ और वो मंदिर को लूट के ले गए। अब देखिए, एक ईर्ष्या का संस्कार, एक बदले का संस्कार, एक क्रोध का संस्कार एक आदमी का, और उसने इस देश को लुटवा दिया। अब लोग तो यही कहेंगे भाई मोहम्मद गजनवी लुटेरा था, लेकिन उस लुटेरे को लूटने के लिए प्रोत्साहित किसने किया, रास्ता किसने दिया? इन तीन संस्कारों ने। और इन तीन संस्कारों के कारण इस देश का कितना नुकसान हुआ, कितना सारा धन दौलत गधों पे, ऊंटों पे, खच्चरों पे भर करके वो ले गया। अगर उसकी गिनती की जाए तो अरबों खरबों पद्मों से भी ज्यादा बने आज के हिसाब से तो। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। खता तो एक घड़ी की, एक लम्हे की ही होती है, लेकिन उसके कारण भारत 1200 साल के लिए गुलाम हो गया। तो इस भारत की गुलामी का कारण क्या? किसी ना किसी आत्मा के कमजोर संस्कार। और उसके बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा इतिहास से, उसके बाद भी हम क्रोध भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, बदले की भावना भी रखते हैं, और उसके बाद भी आज भी प्रतिदिन क्रोध के कारण इस देश का कितना नुकसान होता है। युद्ध में जो नुकसान होता है वो तो एक बार होता है, लेकिन हिंसा से, क्रोध से, द्वेष से, नफरत से हर रोज नुकसान होता है। इसलिए पड़ोसी देश इतने ज्यादा हमारे लिए नुकसानकारक नहीं जितने हमारे भीतर के संस्कार हमारे लिए नुकसानकारक। तो ये तो हो गई ओवरऑल सारे देश की बात, इतिहास की बात। लेकिन मेरे छोटे से जीवन में मेरे किसी भी संस्कार ने मुझे कितना धोखा दिया। एक छोटी सी जीभ है, यही कितना धोखा दे देती है। हम ना खाने योग्य चीज खा लेते हैं, उसके बाद देखो कितनी लंबी कहानी हो जाती है। डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, बेचैन होते हैं, बीमार होते हैं, पैसा खर्च करते हैं, दूसरों की सेवा लेते हैं, अपना भी चैन आराम चला जाता है। एक छोटा सा संस्कार खाने पीने का, शक्ति का, लालच का, एक छोटा सा संस्कार क्रोध का। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्रोध ऐसी चीज है जो गलती दूसरे की और हम नुकसान अपना करते हैं, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले क्या बिगड़ता है, सबसे पहले हमारे विचार बिगड़ते हैं, उसके बाद हमारा चेहरा बिगड़ता है, उसके बाद हमारी वाणी बिगड़ती है, उसके बाद हमारे शरीर के भीतर के जो बड़े सॉफ्ट ऑर्गन्स वो बिगड़ते हैं, उनका नुकसान होता है। तो सारा बिगाड़ तो हमारा है, दूसरे का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, तो नुकसान किसका हुआ? गलती किसी ने की और मेरी तो कई सारी चीजें बिगड़ गई। तो मेरा कोई भी संस्कार मेरा कितना नुकसान करता है, ईर्ष्या का संस्कार, हम कितनी भी ईर्ष्या कर लें, लेकिन सामने वाला तो आगे बढ़ेगा ही, हम ईर्ष्या करते रहते हैं वो आगे बढ़ता जाता है, हम ईर्ष्या करके पीछे हटते जाते हैं, उसको थोड़ी हम पीछे हटा सकते, हम पीछे हटते जाते हैं। बदले की भावना, जो आदमी बदले लेने की भावना रखता है वो क्या करता है, वो भी अपना नुकसान करता है। कहते हैं बदला नहीं लो, खुद को बदल लो, लेकिन हम खुद को नहीं बदलते, अपने को भी बर्बाद करते हैं और दूसरे को भी बर्बाद करने की योजना बनाते, उस योजना में हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है, संकल्प जाते, समय जाता, निद्रा जाती, कितना नुकसान होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कितना मेरे संस्कार ने मेरा कितना नुकसान किया, इसके कारण मुझे कितनी बार नीचा देखना पड़ा, कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ा, इसके कारण कितनी बार मुझे लोगों के कड़वे शब्द सुनने को मिले, डांट खानी पड़ी, इसके कारण मेरे कितने आवश्यक काम बिगड़ गए। अगर मैं ये आकलन करूं तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा ये संस्कार ही है। दुनिया में तो मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि गीता कहती है आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु आप है। और ये शत्रु भी ऐसा है जो मेरे से बिल्कुल अलग नहीं है, जिसको कहते हैं आस्तीन का सांप। एक सांप है वो बाजू में ही घुसा रहता है, जब भी मुंह निकाल के डंक मार देता है। तो ये संस्कार तो ऐसा सांप है जो 24 घंटे मेरे साथ है और अपना मुंह निकाल करके जब मर्जी डंक मार देता है, मैं इससे बचूं कैसे, अलग नहीं है ना मेरे से। तो मेरे इस एक संस्कार ने मुझे कितना पीछे खींच लिया, कितना मेरा नुकसान किया। अगर मैं गिनती करूं तो गिनती हो ही नहीं पाती, इतना इसने मेरा अहित किया। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने इस शत्रु को खत्म करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, 20 नाखून का जोर लगा करके भी इसकी समाप्ति की योजना बनानी चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा वैरी है, मुझे इसे मिटाना ही है, मुझे ये दृढ़ संकल्प करना है बार बार। और कितना के बाद अगला सवाल है, कैसे मैं इसको कैसे मिटाऊं। कई बार क्या होता है, हम संस्कार की डाली को काटते हैं, उसकी जड़ को नहीं काटते हैं, थोड़े दिन में वो फिर उगाता है, थोड़े दिन में वो फिर उगाता है। तो जब तक जड़ नहीं उखाड़ी तब तक वो मिटता नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा दीवारों पे पीपल का पेड़ उगाता है, ऊपर से अपन काटते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर उसको पत्ते निकल आते हैं, फिर काटते हैं, और अगर उसको काटा ना जाए तो कई बार दीवार भी गिर जाती है, क्योंकि उसकी जड़ें बढ़ती जाती हैं, दीवार क्रैक हो जाती है। तो संस्कार अंदर ही अंदर फिर बढ़ता जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, पहले वो अंश जितना होता है, बाद में उसका पूरा वंश खड़ा हो जाता है। इसलिए एक तो अंश सहित मिटाना है और दूसरा जड़ सहित मिटाना है। कई बार हम देखते ही हैं कि कोई भी आत्मा बाबा के घर में आती है और हम उसको बहुत प्यार स्नेह देते हैं। पुराने भाई बहन उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं और वो आत्मा भी महसूस करती है कि मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। आगे बढ़ती जाती है, अच्छी मुरली सुनने लगती है, सेवा भी करने लगती है। मान लीजिए एक साल तक ऐसा सब कुछ हुआ और एक साल के बाद वैसी ही कोई नई आत्मा और आ गई और हम उसको भी ऐसे ही प्यार देने लगे, आगे बढ़ाने लगे, उसकी भी महिमा करने लगे, तो जो एक साल पुरानी आत्मा थी उसने आना बंद कर दिया। उससे पूछते हैं, भाई क्या हुआ, तुम तो रोज आते थे और तुम तो उड़ती कला में जा रहे थे, अब आना बंद क्यों कर दिया, क्या कारण हुआ? पहले उसको लगता था कि ये सारे लोग मेरे हैं, फिर उसे लगने लगा नहीं, ये तो इसके भी हैं, ये जो नया आया ये सिर्फ मेरे थोड़े हैं, इनकी तो आदत है, ये सबको प्यार कर करके अपना बना लेते हैं, पर ये है नहीं किसी के भी। तो शुरू में क्या हुआ था, शुरू में उसको प्यार की बड़ी भूख थी, दुनिया में प्यार मिला नहीं था, एकदम प्यार मिला मनुष्य आत्माओं का तो उड़ने लगा। लेकिन वही प्यार जब दूसरे को भी मिलता देखा तो सोचा कि यहाँ भी वही बात है, दुनिया में थी वही बात है, बेचारा बैठ गया। तो कमजोरी कहाँ है, कमजोरी कहाँ है? फिर कोई कहेगा इस कारण बैठ गया, कोई कहेगा उस कारण बैठ गया, लेकिन कमजोरी कहाँ है? उसने भगवान के प्यार को नहीं पहचाना, केवल मनुष्यों के प्यार के आधार पे चला, तो मनुष्यों का प्यार किसी को कितने दिन चलाएगा? चलने की ताकत तो ईश्वरीय प्रेम से आती है, अब एक साल में ईश्वरीय प्रेम को लेना नहीं सीखा और मनुष्यों का प्यार उसको लगा, ये तो इसके भी हैं, उसके भी हैं, उसके भी हैं। तो वास्तव में टिकने का आधार है ईश्वरीय प्रेम, और ये जितना ज्यादा मजबूत होगा हम हर परिस्थिति में टिके रहेंगे। ईश्वरीय प्यार हमें मजबूती देता है, मनुष्यों का प्यार अल्पकाल के लिए मजबूती देता है लेकिन परिस्थितियां आने पे उतनी शक्ति नहीं मिलती है। तो हम बात कर रहे थे संस्कारों की, संस्कार मिटे कैसे, कमजोरी हटे कैसे। तो संस्कार को मिटाने के लिए बाबा रोज मुरली में बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये जो विकर्म है ये हमारे पुराने संस्कार ही है और याद के बल से ये संस्कार डिलीट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जैसे अपन कपड़ा धोते हैं तो उसके दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, तो ये संस्कार तो दाग धब्बे की तरह से। जितना जितना ज्ञान और योग का साबुन लगता है ये संस्कार उतरते जाते हैं। और मुझे याद है हम लोगों ने मैगजीन में एक बार एक सांसद का अनुभव डाला था, भारत का एक सांसद था जो थोड़ा थोड़ा ब्रह्मा कुमारी के कॉन्टेक्ट में था, और एक बार वो विदेश गया, सब कुछ खाता पीता था, जितनी भी नॉन वेज की या वैष्णो की चीजें होती हैं वो सब खाता पीता था। तो एक बार जब वो विदेश गया तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उसके जो चेले चाटे थे उसको खूब सारा बैग भर के वैष्णो की चीजों के दे गए, कोई खाने की, कोई पीने की, कोई चूरट होगी, कोई पान मसाला होगा, या जो भी गुटके होंगे, जो भी होंगे, तो वो सब लेके गया और विदेश में भी खाता रहा। लेकिन एक दिन जब वो न्यूयॉर्क में आया तो उसका जो साथी था उसने बताया कि यहाँ ब्रह्मा कुमारियों का आश्रम है और वो लोग मेडिटेशन सिखाती हैं। तो दोनों अंदर गए देखने और वहां उन्हें इतनी शांति मिली, कुछ विदेशी लोग भी थे, उनको देख के तो वो हैरान रह गए कि ये लोग भी मेडिटेशन सीखते हैं। और जब बहनों ने देखा कि इनको अच्छा लग रहा है तो बहनों ने कहा चलो आप भी यहाँ एक दो दिन ठहर सकते हो, हमारी क्लासेज में बैठ सकते हो। तो उस दिन पहला क्लास था आत्मा का और वे दोनों भाई बैठे, बहुत थोड़े लोग होते हैं वहां, तो 15 से ज्यादा नहीं होते, छोटा सा कमरा था और एक बहन बड़े साइंटिफिक ढंग से आत्मा की अनुभूति करा रही थी। तो जब वो सुनाने लगी कि इस देश के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, तो वो सुनाती गई और वो अनुभव करता गया। कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप थोड़े से शब्द बोलते हो लेकिन सामने वाले को अनुभव हो जाता है। कई बार हम घंटा भर प्रवचन करते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता, और कई बार हमारा हर शब्द एक अनुभूति बन के सामने वाले के अंदर समा जाता है। तो वो बहन बोलती गई, आप एक आत्मा है, ज्योति स्वरूप है, और इसको इसके भाग्य अच्छे थे, अनुभव होता गया, इसको बहुत ज्यादा शांति मिली, गहरी शांति, इतनी अच्छी शांति जीवन में कभी नहीं मिली थी। बिल्कुल ये बॉडी से डिटैच हुआ, भीतर के नेत्रों से इसे आत्मा का अनुभव हुआ, अनुभूति हुई शांति की, एकाग्रता की। और इस एक घंटे के लेसन में बहुत बल मिला इसको। उसके बाद अगले दिन परमात्मा अनुभूति का लेसन था और उस बहन ने बड़ी अच्छी विधि से, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से बताया कि इस सारी दुनिया का जो रचनाकार है वो एक है, ज्योति बिंदु है, परम धाम निवासी है, वही आत्मा का पिता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे जैसे वो बोलती गई इसको वो परमात्मा का भी अनुभव होता गया। उसने परम धाम बोला तो इसको परम धाम का अनुभव हुआ, परम धाम में एक ज्योति बिंदु सितारा है तो इसको उस सितारे का अनुभव हुआ, उसमें सुख शांति आनंद प्रेम भरा हुआ है तो इसको सुख शांति का अनुभव हुआ। वो जो जो बोलती गई ये अनुभव करता गया। और दोनों सत्रों के बाद इतना मन शांत हो गया, जीवन में यहाँ तो कभी शांति मिली ही नहीं थी। एक तो खाने पीने की अशांति, एक पद ऐसा उसके कारण भी अशांति, तो इतनी सारी शांति जब मन में आई तो इसने सोचा अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, और इसने वापस भारत आने की योजना बनाई, बाकी सब जगह का टिकट कैंसिल करवा दिया। ये भारत में आया और जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आया तो इसके वही मित्र चेले चाटे फिर इससे मिलने आए और फिर एक थैला भर करके उन्हीं चीजों का ले आए जो इसको जाते समय दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि जब इसको वो थैला पकड़ाने लगे तो इसने बोला ये तुम क्या ले आए, इनमें तो बदबू आ रही है, ये भी कोई चीज है खाने की। तो उन्होंने कहा अभी एक हफ्ते पहले आपको ये पूरा थैला भर के दिया था और आपने बड़े प्यार से पकड़ा था। बोला नहीं, मैंने तो कुछ पकड़ा नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं। तो इन लोगों को लगा कोई दूसरी आत्मा ना आ गई हो इसमें। फिर ये घर गया तो वहां उसकी बीबी ने कुछ अंडे का बना रखा था,
और वो जब लेके आई तो इसने बोला ये इतनी गंदी बदबू वाली क्या चीज उठा लाई, कोई खुशबूदार चीज खिलाना। उसने भी बोला आप जब गए तो यही खा के गए थे। बोला नहीं मैं तो खा के ही नहीं गया, ऐसी गंदी सड़ी चीजें मैं खाता ही नहीं। तो उसको भी विश्वास हो गया कि आत्मा बदल के आई है। उसने दूसरी चीज बनाई और बाद में जब उसको पूछा गया कि वहां क्या क्या हुआ था बताइए तो सही, तो इसने बताया कि और तो कुछ नहीं हुआ पर मैं वहां एक आश्रम में गया था और मुझे इतनी गहन शांति मिली, और वो ब्रह्मा कुमारियों का आश्रम था, इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, अभी भी मेरा मन वही है, अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूँ वहां की शांति को, तन से यहाँ हूँ पर वो शांति मेरे भीतर से अभी निकली नहीं। तो इसको बताया गया कि ये ब्रह्मा कुमारियों का आश्रम तो यहाँ भी है, तो बोला मुझे मिलाओ। तो बहनों से उसे मिलाया गया और फिर बहनों ने कहा कि आपने जो बाहर देखा वो तो बहुत छोटा था, यहाँ बहुत बड़ा इंडिया में, आपको वहां ले चलते, और फिर वो उसे यहाँ ले आई। तो यहाँ जिस कॉन्फ्रेंस में वो आया उसमें वो अपना अनुभव सुना रहा था कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मेरे संस्कार कब बदल गए, मेरे व्यसन कब छूट गए, मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की लेकिन अपने आप ही खत्म हो गई। अब होता क्या है कि प्यारे बाबा की एक हल्की सी किरण उस तक पहुंची, सूर्य की एक किरण भी बहुत कमाल कर देती है, कहीं नमी होती है, कहीं कीड़े होते हैं, तो खिड़की में से भी किरण आती है तो नमी को सुखा देती है और कई बार और भी कई काम कर देती है। पूरी की पूरी किरणें पड़े फिर तो कमाल ही हो जाए, लेकिन एक छोटी सी किरण भी कमाल कर देती है। तो उसको तो केवल एक ही किरण, छोटी सी किरण आई क्योंकि वही एक घंटे का सेशन था और उसी में उसकी पुरानी फाइलें डिलीट हो गई, लेकिन ये वो फाइलें थी जो बहुत पक्की फाइलें नहीं थी, टेम्परेरी, क्योंकि जो व्यसनों वाली फाइलें हैं वो टेम्परेरी फाइलें, एक जन्म की। व्यसन तो भारत में पहले थे ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने में व्यसन आए। तो इस आत्मा के अगर ये व्यसन के संस्कार इस जन्म के थे तो भी 20 साल के बाद बने होंगे, तो ये कुछ समय की बनी हुई फाइलें थी जो एक किरण आई और डिलीट हो गई। लेकिन हमारे कुछ संस्कार कई जन्मों के हैं, जैसे देह अभिमान का संस्कार है और देह अभिमान जनित जितने भी विकार वो तो द्वापर से बनने शुरू हो गए, वो संस्कार थोड़े ज्यादा कड़े हैं, तो उनको डिलीट होने में लंबी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जो हल्के से दाग धब्बे थे ये तो झट खत्म हो गए। तो विचार कीजिए कि केवल कुछ घड़ियों के मेडिटेशन से, कुछ घड़ियों की गहन अनुभूति से ऐसे संस्कार खत्म हो सकते हैं। तो अगर हम बाबा के बच्चे, जिन्हें बाबा रोज कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, पाप नाश होंगे, पवित्र बन जाओगे, आत्मा की शक्तियां बढ़ेंगी, तो अगर हम उतना ही जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं या गहन योग कहते हैं या बीज रूप अवस्था कहते हैं, अगर उस अवस्था में टिके तो हमारे जो 63 जन्मों के पक्के संस्कार हैं वो फाइलें डिलीट होने में कितना टाइम लगेगा। लौकिक दुनिया में तो लोग कहते हैं कि संस्कारों को बदला नहीं जा सकता, और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि देखो एक जानवर है डॉग, और डॉग की जो पूंछ है वो मुड़ी होती है, तो वो कहते हैं इस पूंछ को आप बेशक सीधी नली में डालो लेकिन फिर भी ये मुड़ी रहेगी, अर्थात संस्कार को बदला नहीं जा सकता। दुनिया में लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि दुनिया की कोई भी योग पद्धति संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई योग पद्धति, कोई ज्ञान पद्धति या कोई भी तपस्या की पद्धति संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाती। इसलिए जो बड़े बड़े तपस्वी हुए उनका भी कोई ना कोई संस्कार उनके भीतर रह गया, और वो संस्कार जब उनकी जीवन की चर्चा होती है तो संस्कार की भी चर्चा होती है। किसी में जिद रह गई, किसी में क्रोध रह गया, किसी में लालच रह गया, तो लोगों ने ऐसी मान्यता बना ली। लेकिन हमारे प्यारे बाबा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, परिवर्तन की जिनमें असीम ताकत है, हमारे बाबा की एक छोटी सी शक्ति की किरण भी किसी भी आत्मा को बदल सकती है। और हम लोगों को कहती हैं कि देखो, प्यारे बाबा के साथ योग करने से हमारे लाखों भाई बहन बदले हैं। एक भाई बहन भी ऐसा नहीं है जिसके संस्कारों में परिवर्तन ना आया हो, दिव्यता ना आई हो। लास्ट नंबर का बच्चा भी बाबा से शक्ति लेकर के परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन की गति किसी की तेज है, किसी की धीमी है, लेकिन परिवर्तन हरेक का हुआ है, और वो परिवर्तन योग बल से ही हुआ है। इसलिए अगर हम अपने योग बल को बढ़ा लेते हैं तो हमारे संस्कारों की संपूर्ण दिव्यता शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगी। हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि हमारे में ये परिवर्तन हो कब गया। लोग हमें याद दिलाएंगे कि आप ऐसे थे, और हम कहेंगे हम ऐसे थे, हमको तो याद ही नहीं है, हम तो ऐसे कभी थे ही नहीं। अर्थात अंश भी और अंश के साथ साथ वंश भी बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो संस्कार परिवर्तन कहिए, संस्कारों का दिव्यीकरण कहिए, संस्कारों का परिशोधन कहिए, इसका आधार है प्यारे बाबा की गहन स्मृति, प्यार भरी स्मृति, कर्म करते हुए स्मृति, निरंतर स्मृति, हर छोटी छोटी बात में बाबा की स्मृति। क्योंकि जब हम सारा दिन स्मृति में रहते हैं तब हम योग में बैठ करके स्मृति स्वरूप हो सकते हैं। अगर दिन भर स्मृति में नहीं रहे तो योग का टाइम तो फिर युद्ध में चला जाता है। तो यहाँ बाबा के घर में हम सबको इसीलिए निमंत्रण मिला कि हम उस सर्वशक्तिवान की शक्तियां लेकर के अपने अंदर सुषुप्त दिव्यता को जगाएं, अपने दैवी संस्कारों का आह्वान करें। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में हमारी में जो दिव्यता थी वो फिर से हमारे जीवन से प्रकट हो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चों के संस्कार बड़े रॉयल होने चाहिए। तो रॉयल संस्कार कहिए, दिव्य संस्कार कहिए, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, धैर्य से काम करना, बिना आवाज के चलना, बिना आवाज के खाना। अभी तो जनवरी महीना आ रहा है, वैसे भी हम अव्यक्त मास की तैयारी में हैं, तो अभी से हम अपने स्वरूप को अव्यक्त बनाएं। आज सुबह मेडिटेशन में बाबा ने कहा था, एक सेकंड में अपना स्वरूप बनाओ, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता, एक मिनट में नहीं, एक सेकंड में। तो ये भूमि तो है ही फरिश्तों की भूमि, वरदानी भूमि। तो यहाँ हम सब भाई बहने ऐसा माहौल बनाएं कि इस माहौल में जो आए आते योग युक्त हो जाए, कमरों में भी जाएं, रास्तों पे भी चलें, तो एक दो को रूहानी दृष्टि, फरिश्तों जैसी दृष्टि दें, एक दो के लिए शुभ भावना रखें, छोटी मोटी बातें सामने आई तो उनको लेट गो कर दें, यज्ञ की छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखें, पानी है, बिजली है, और बहुत मीठी आवाज में धीरे बोलें, ताकि हमें देख करके औरों को भी अव्यक्त बनने की प्रेरणा मिले। तो हमारे संस्कारों में जो सतयुग में दिव्यता थी, उसे हम पुनः प्रकट करें और संगठन में रहते प्रकट करें। अगर हम एक दो हैं तो उस समय कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम हजारों के बीच में, लेकिन फिर भी बाबा की बताई हुई अव्यक्त इशारों को पकड़ के चलते हैं, बाबा की बताई हुई श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत बन जाएगी। और आने वाले समय में हमारी मजबूत स्थिति ही हमें काम आएगी। अभी भी देखो, दुनिया में इतनी बड़ी हलचल हुई, लेकिन प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को अचल रखा। पहले से ही बाबा ने ऐसे पाठ पढ़ा रखे थे जो इस समय बहुत काम आए। तो अभी से हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बना के रखें, और यहाँ जो हमें हफ्ता मिला या 10 दिन मिला, इसमें तो खूब एकांत में अभ्यास करें। थोड़ा भी टाइम मिले तभी योग का अभ्यास करें, तभी किसी गुण का अभ्यास करें, किसी शक्ति का आह्वान करें। एकांत में बैठ के अपने भीतर देखें कि जब मैं वहाँ कार्य क्षेत्र पे था तो कौन सी कमी मुझे बार बार आगे बढ़ने से रोक रही थी, मैं उसको यहाँ भर करके जाऊं। ऐसे बार बार अंतर्मुखी होकर के अपने पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे, तो जब बाबा आएंगे तो बाबा हमें बहुत वरदान देंगे। हमारी स्थिति इतनी अच्छी होगी कि हम बाबा से बहुत अच्छा मिलन मनाएंगे और बहुत वरदानों से अपनी झोली भरेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।